أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها شہید مرتضیٰ مطہری علی اللہ مقامہ کی کتاب قیام و انقلاب مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں یہ ہماری دوسری گفتگو ہے. ہم اس میں دیکھیں گے کہ معاشرے کی طبیعت اور نیچر کیا ہے, اور آیا تاریخی تحولات, تاریخی تبدیلیاں, تاریخی انقلابات اتفاقی ہیں یا ایک طبیعی اور نیچرل امور کا ایک سلسلہ ہے جو تبدیلی تک پہنچاتا ہے. اس گفتگو کا رب پچھلی گفتگو سے جوڑنے کے لیے ہم ایک جملے میں عرض کریں کہ ہم نے انتظار کی دو قسمیں بیان کیں. شہید نے جس طرح سے بیان کی کہ ایک تعمیری انتظار ہے اور ایک تخریبی انتظار ہے, تباہ کرنے والا انتظار ہے. انتظار کو دو طرح سے کیوں سمجھا گیا, دو نگاہیں کیوں بنی, اس کی اساس یہ تھی کہ چونکہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کو دو طرح سے دیکھا گیا, اور ظہور کو دو انداز سے دیکھنے اور سمجھنے کی بنیاد بھی اس چیز میں ہمیں تلاش کرنی ہے کہ تاریخ میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور تحولات کو دو نگاہوں سے دیکھا گیا ہے اور دو طرح سے سمجھا گیا ہے. ہم نے یہ بات کی کہ معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی ان تبدیلیوں اور تحولات کو اگر سمجھنا ہے کہ کیوں دو نگاہیں ان کے بارے میں بنی, تو ہمیں خود اس معاشرے کی نیچر اور طبیعت کو سمجھنا ہوگا. تو آج کی ہماری گفتگو یہی ہے کہ معاشرے کی طبیعت اور نیچر کیا ہے. شہید اس حوالے سے یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا یہ تاریخ میں ہونے والے تحولات, یہ تبدیلیاں اتفاقی ہیں یا نہیں, بلکہ ایک طبیعی اور نیچرل امور کا سلسلہ ہے کہ جو بالآخر تبدیلی اور تحول تک پہنچاتا ہے. اس حوالے سے شہید فرماتے ہیں کہ ممکن ہے یہ کہا جائے کہ معاشرہ, خود معاشرے کو دو زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے. یہاں پر شہید کہتے ہیں ممکن ہے کہا جائے کہ یہ معاشرہ افراد کی شخصیتوں پر مشتمل ہے, اور افراد کی شخصیتیں ہی ان تحولات, واقعات اور حالات کا سبب بنتی ہیں. جبکہ ممکن ہے یہ کہا جائے دوسری نظر کی بنیاد پر, دوسرے نقطۂ نظر کی بنیاد پر کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ جب یہ افراد ملتے ہیں اور ایک معاشرہ بنتا ہے تو اب ایسا نہیں رہتا کہ اب بھی فقط افراد ہی کی شخصیتیں نہیں, بلکہ اب اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ ان شخصیتوں کے, ان افراد کے مجموعے سے خود معاشرہ ایک شخصیت حاصل کر لیتا ہے. معاشرہ ایک طبیعت اور ایک نیچر حاصل کر لیتا ہے جو مستقل ہوتی ہے. تو معاشرے کے بارے یہ دو نگاہیں ہو سکتی ہیں, ممکن ہیں. پھر شہید بیان فرماتے ہیں کہ اگر پہلی صورت کو دیکھا جائے کہ جس میں فقط معاشرہ افراد کا مجموعہ ہے اور افراد ہی کی شخصیتیں حرف اول اور حرف آخر ہیں, تو افراد کی زندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے باہر. اگر درس ہے, اگر عبرت ہے, تو وہ ایک ایک فرد کی زندگی درس ہے اور عبرت ہے. من حیث المجموع معاشرہ سبب عبرت نہیں ہے. لیکن دوسری نگاہ سے اگر دیکھا جائے اور معاشرے کو خود ایک شخصیت کا حامل سمجھا جائے, یہ جانا جائے کہ معاشرہ خود ایک طبیعت اور ایک نیچر رکھتا ہے, تو خود اس نظر کی بنیاد پر ہم یہ جان لیں گے کہ خود تاریخ اپنا ایک فلسفہ رکھتی ہے. اگر ہم معاشرے کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ یہ شخصیت رکھتا ہے, تو اب تاریخ اپنا ایک فلسفہ رکھتی ہے, کلی قوانین اور کلی ضوابط رکھتی ہے یہ تاریخ. اس صورت میں یہ تاریخ غور و فکر کا موضوع بن سکتی ہے. اسی صورت میں یہ تاریخ آئینہ عبرت قرار پا سکتی ہے. تو دیکھیے کتنا فرق ہے ان دو نگاہوں میں. اب جبکہ ہماری گفتگو انتظار فرج کے حوالے سے ہے, اور انتظار فرج جہاں ایک طرف فلسفی, اجتماعی اور معاشرتی بحث ہے, اسی طرح سے ایک دینی اور اسلامی بحث بھی ہے. जब दीनी और इस्लामी बहस है तो हमें इंतज़ार फ़र्ज़ की इस बहस से कबल ये देखना होगा कि वो दीन, वो शरीयत जो इंतज़ार फ़र्ज़ का हमें दर्स दे रही है, वो दीन, वो कुरान खुद मुआशरे को किस निगाह से देख रहा है? आया पहली निगाह से देख रहा है या दूसरी निगाह से देख रहा है? तो शहीद बयान फरमाते हैं कि जब कुरान मजीद में गौर व फिक्र किया जाए, या जिन्होंने गौर व फिक्र किया है, जो जानने वाले हैं, उनसे पूछा जाए, तो हम इस यकीन को पहुंच जाते हैं कि कुरान मजीद तारीख को शनाख्त का, पहचान का एक मंबा और एक सोर्स जानता भी है और दूसरों को भी बताता है। कि तारीख शनाख्त का एक जरिया है, तारीख शनाख्त का एक सोर्स है। अब ये तफक्कुर का मौजू बनती है, तज़क्कुर का मौजू बनती है, इबरत हासिल करने का मौजू करार पाती है। लेकिन आया कुरान मजीद तारीख को एक फर्दी निगाह से देखता है या इज्तिमाई निगाह से, यानी पहली निगाह से देखता है या दूसरी निगाह से? तो हम थोड़ा गौर करके समझ सकते हैं कि कुरान मजीद तारीख को सबब इबरत करार देता है, इस मुआशरे पर हाकिम कवानीन बयान करता है, और कवानीन मुआशरे पर तभी हाकिम हो सकते हैं कि जब मुआशरा अपनी नेचर, अपनी तबीयत और अपनी शख्सियत रखता हो। इस तरीके से हमें कुरान मजीद की निगाह की समझ आती है कि कुरान मजीद इस मुआशरे को किस निगाह से देखता है, यानी खालिक कायनात जिसने इस मुआशरे को खल्क किया है, उसकी निगाह में ये मुआशरा क्या है। हम देखते हैं कि सवाल पूछते हैं, जानूए अदब तय करते हैं कुरान मजीद की बारगाह में, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आया मुआशरों पर यकसां कवानीन हाकिम हैं या नहीं है। अगर शख्सियत रखता होगा तो फिर कवानीन इस पर हाकिम होंगे, नहीं तो हर फर्द का मामला जुदा होगा। कुरान मजीद अकवाम और उम्मतों की जिंदगियों को माया इबरत करार देता है। सूरह बकरा की आयत 134 और 141 में ये बात मौजूद है। इसी तरह से शहीद बयान करते हैं सूरह आराफ की आयत नंबर 34 को, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलिकुल्ल उम्मतिन अजल, हर उम्मत के लिए एक वक्ते मुकर्रर है, फ़ाइज़ा जा अजलुहुम, जब उनका ये वक्ते मुकर्रर आ पहुंचता है, तो ला यस्तअखिरून साअतं वला यस्तकदिमून, तो न एक साअत के लिए उसमें ताखीर होती है, न एक साअत उससे पहले ये वाक़िया रूनुमा हो पाता है। इससे आप समझें कि कवानीन हुक्मरान है इस मुआशरे के ऊपर। इसी तरह से सूरह फातिर की आयत 43 के अंदर इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़हल यंज़ुरूना इल्ला सुन्नतल अव्वलीन, फ़लन तजदल सुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजदल सुन्नतिल्लाहि तहवीला। सुन्नत इलाही में ना कोई तब्दीली आती है, ना कोई तहव्वुल रूनुमा होता है। इसी सबब से सबब इबरत करार दिया गया है तारीख को, कि इंसान तारीख में जारी इन इलाही सुन्नतों को देखकर खुद अपने आप को उसके साथ रख के मवाजना करता है कि पिछले लोगों ने ऐसा किया तो ये हुआ उनके साथ, और ऐसा किया तो ये हुआ, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम ये करेंगे तो हमारा क्या अंजाम होगा, और अगर दूसरा अंदाज अपनाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। इंसान एक अंदाज़ा लगा सकता है अपने बारे में कि हमारा एंड क्या है, हमारा अंजाम क्या है, हमारे साथ कल को क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। ये इबरतें हैं तारीख की। बस इससे समझ में आता है कि तारीख शख्सियत रखती है, तारीख के ऊपर कवानीन हुक्म फरमा हैं। सरनिविष्ट और इस तारीख के ऊपर हाकिम सुन्नतें शहीद फरमाते हैं दर हकीकत रद्दे अमल हैं, रिएक्शंस हैं, और उनका एक मजमुआ है कि जो एक्शंस और अमल के मुकाबले में है। अगर ऐसा करेंगे तो उसका ख़ास रद्दे अमल सामने आएगा, और अगर कुछ और करेंगे तो उसका ख़ास रद्दे अमल सामने आएगा। ये सुन्नतें हैं, ये इलाही सुन्नतें हैं, ये हाकिम कवानीन हैं मुआशरों के ऊपर और तारीख के ऊपर। हुक्म फरमा। शहीद कहते हैं कि मुआशरे के मुअय्यन अमाल मुअय्यन रद्दे अमल रखते हैं, और वैसा ही होगा। और आखिर में इसी हवाले से कि ये अमल और रद्दे अमल का एक सिलसिला है, और कवानीन हुक्म फरमा हैं, शख्सियत रखता है मुआशरा कुरान मजीद की निगाह में। इस आयत मुबारका से हम इख्तिताम करेंगे अपनी इस गुफ्तगू का। सूरह मुबारक रात के अंदर इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है आयत 11 के अंदर, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि किसी कौम पर हाकिम वज़ईयत सूरत हाल को जब तक वो लोग ख़ुद तब्दील ना करें तब्दीली नहीं आती। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो ये कुरान मजीद कवानीन बयान कर रहा है मुआशरों के ऊपर जो हुक्म फरमाए। बस मुआशरा शख्सियत रखता है, मुआशरा फ़कत अफराद के मजमूए का नाम नहीं है। जब अफराद मिलते हैं तो उनके मजमूए से मुआशरा बनता है, और इसकी अपनी एक शख्सियत बनती है, इसकी अपनी एक तबीयत होती है, और इसकी अपनी एक नेचर होती है। यहीं से हम अपनी गुफ्तगू को अगली किस्त में, अगले हिस्से के अंदर आगे बढ़ाएंगे, और देखेंगे कि जब मुआशरा किसी मकतब की निगाह में साहिब शख्सियत हो जाए, और फिर शख्सियत भी ऐसी ऐसी शख्सियत की निगाह से वो मकतब इस मुआशरे को देखता हो कि ये ज़िंदा शख्सियत है, तकामुल और इर्तिका की तरफ बढ़ने वाली शख्सियत है, तो ऐसे मुआशरे का ये तकामुल की तरफ बढ़ना है, इसकी तफसीर क्या है, इससे क्या मुराद है, और इंसान जो इस मुआशरे में बुनियादी तरीन हैसियत रखता है, इस इर्तिका की तरफ, मुआशरे के इस इर्तिका की तरफ और कमाल की तरफ जारी इस सफ़र के अंदर वो क्या किरदार अदा कर सकता है। और फिर जिस फ़र्ज का इंतज़ार कर रहा है ये मुआशरा, उसका इंतज़ार कैसा होना चाहिए, और इंसान का उसके लिए क्या किरदार होना चाहिए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।